श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आंखों देखा कि प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री श्री नानक साहिब जी आंखों देखा हाल लिख रहे हैं पहला मैला में कि फाई सूरत मलुक की वेश है, फाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रहा माने ये बैठा बिल्कुल साक्षात कर देख कर जैसे बोल रहे हो ऐसे वो धानक रूप रहा करता कि ये परमात्मा ये धानक रूप है ये पूर्ण ब्रह्म है। फिर उसमें नाम लिखा 721 पृष्ठ पे स्पष्ट नाम लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर क्रीम तू बेऐब परवरदिगार। पुण्यात्मा अपने सदग्रंथ एक खजाना है इसमें अनमोल धन दबा पड़ा था और ये चाबी दास को मिलगी। अब ये खोल दिया खजाना अपनी प्यारी आत्माओं के लिए परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए। अब भी कोई भूखा रहेगा अब भी कोई दारिद्र रहेगा तो उसकी अपनी वीकनेस कमजोरी होगी परमात्मा का दोष नहीं। यह पवित्र वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर है सह शरीर है और पापों का विनाशक सारे दुख निवारण करने वाला और सतलोक में रहता है। पवित्र गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है जो पूजा के योग्य है उसकी उसको मैं नहीं जानता वो किसी संत को तलाश करो। ये दास आपके लिए भेज दिया परमात्मा ने बा खबर बना गए और ईव आपने देखना है। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पारे बहोर नहीं है ऐसा दाओ। अब समझा है तो सिर पे पांव रखना बहुत तेज दौड़ देना यानी इतना भयभीत होकर के जैसे गाड़ी पकड़नी हो और विसल दे दी और आप आधा किलोमीटर दूर हो और फिर गाड़ी आवर नहीं अगले दिन आनी हो फिर वो व्यक्ति कितनी स्पीड पकड़ता है या कोई आपत्ति काल हो और फिर कितनी स्पीड से इंसान भागता है। कहते इतना अब दौड़ लगा दे इस भक्ति मार्ग में सत भक्ति मार्ग में इस उद्देश्य से कि हे भगवान जब अब रह गए तो फिर ना पता कब जन्म होगा मनुष्य जन्म मिले ना मिले मिले तो ऐसा संत मिले नहीं ऐसा मार्ग मिले नहीं ये परमात्मा तो ये सारा जोड़ जुगाड़ बहुत ही योगों पर्यांत जुड़ा करता है और अब वो जुड़ गया। अब हमने उसको सदुपयोग करना है तो परमात्मा की एक महिमा का आपको सबक सुनाते हैं। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। ग्याबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढिठाई कह सिकंदर इसे जीवित कर दे तब मानू तेरी खुदाई। ग्याबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढिठाई कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गौ तत्काल जवाई फिर दूध दुहाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु। बिजली खान पठान सुल जाया और अब्राहिम सुल्तानी हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी, बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने या सिख गुरु की मानी, वेद कतेब कहे एक कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोही, सेव दड़ पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई, जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई, माँ बेटे की चुरासी खोई या कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई, जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र ने करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई, विपर रूप धर करी दुहाई मेरी नई पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी है, राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की अपड़गी आग बुझानी, राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की अपड़ गई आग बुझानी, दूत भेज के पूछी कहानी जो की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु है सतगुरु हरदम साथी है, उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर, उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर, डाली उंगली ना सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है, साहेब कबीर को काटन चाल्या सेख पर सेख तकी जलील, आर पार तलवार निकलगी फिर भी समझा नहीं खलील, साहेब कबीर को काटन चाला सेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील, भाग गया ना डाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, सेख तकी ने जुलम किए या बावन करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले बांध जुड़ अविनाशी, सेख तकी ने जुलम करे या बावन करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले बांध जुड़ अविनाशी, हाथी डर से भाग जाती फिर दुनिया गुण गाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है, झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन नहीं था वो भेख जुड़ा अतिबारा, झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, दो रोटी का साधन नहीं था, ये भेख जुड़ा अतिवारा, बन आया के सो बन जा रहा। न्यू होता हिमाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है मूर्ख मनुआ काल की चिंता। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूट पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वो डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूट पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वा डारी। कबीर बट से जात पुकारी, दुनिया देखन जाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी महवर के मदरा जो पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सी महवर के मदरा जो पीवे वाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को ना प्रतीत आती है, हर सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, प्यार राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। स्वामी राम देवानंद जी ने दया करी, प्यार राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मारे राम पाला, अब भक्ति मन भाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, है सतगुरु हरदम साथी है। सत साहे के परमात्मा के विषय में जितना भी महिमा हम गाएं उतनी ही कम है, कि ये वो परमात्मा है जिसकी महिमा का गुणगान ये तुच्छ जीव भा नहीं कर सकती। लेकिन जितना हमें आवश्यक है उतना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होता है। वैसे तो ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है कि ये बहुत समय में आपको समझ में आएगा, फिर भी कुछ दिनों के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि काम आप अच्छी तरह चला सकते हो, मार नहीं खा सकते। और हमें इतना ही ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर हम जिज्ञासु बन जाएंगे, फिर हम वक्ता बन जाएंगे, फिर हम काल के जाल में फंस जाएंगे। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली और मोटरसाइकिल को बस इतना ही जान ले उसकी, भाई कहां से तेल खुल है, कैसे वो चले, गियर क्यूकर लागे, रेस कितनी देनी है, ये अभ्यास कर ले। और यदि उसमें मैकेनिक बनने लग जाओगे, उन्हें खोल कर बैठ जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। ये बनी बनाई है, ये पुस्तकें आपको एक मोटरसाइकिल बनाकर दे दी, परमात्मा का ज्ञान निकालकर ये एक सार बना दिया, इसको पढ़ो और इसके अनुसार ही चलो। कई भक्त कहते हैं जी गरीबदास जी का ग्रंथ साहब मिल जाएगा हमने, अरे नादान पेट में दर्द है, गोली खा अपना इलाज करा, बताओ इन ये कोई एक मेरे को कह रहा जी ये वेद मिल जाएंगे आपके पास, अरे नादान। जब एक पुस्तक आप बीमार हो के पास गया है, वैद कहता है ये पुड़िया खा और ये जड़ी बना के तैयार कर रखी है, अब मरीज कहता है कि ये पुस्तक मिल जाएगी आपकी वैद वाली, नादान कहीं का, अब उसको क्या समझेगा, तो बनी बनाई फांकी तो मारी नहीं जाती और उसमें वैद बनने लग जाए। नीम हकीम न्यू तैयार हो जाते हैं ये और फिर सारा काम डुबो दे। आपको ये जितना ज्ञान दे दिया बहुत सफिशियंट है, अधिक है, बहुत ज्यादा है। और इसका इसका एक आपकी बाउंड्री बन जाएगी और फिर भक्ति करो, बस इतना सा काम है। सारे ज्ञान का निष्क्रय है। कहते कोट ज्ञान का, कोट वेद का यही अर्थ है, अपना स्वर्ग ठिकाने रखे। सब सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि अपना तू भक्ति कर और संत मर्यादा में रहे, पूरे संत की तलाश कर, और जब परम संत मिल जाए तो फिर समर्पण करके निष्कपट भाव से उसकी साधना कर, तब तुझे लाभ होगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, राधा स्वामी पंथ की क्या विचार है, उनकी पवित्र पुस्तकों में, और उनको कैसा भगवान मिला होगा, आप स्वयं निर्णय करना। फिर राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले माने जाते हैं। श्री शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं लिखा, और जबकि ये इन महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि वक्त गुरु के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम तो जहां से प्रारंभ होता है ये पंथ, ये मार्ग राधा स्वामी, वो ही वहां से बगैर गुरु वाले का प्रारंभ है। फिर वो जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं, वो कहते हैं मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है। वो कहते हैं महापुरुष के, मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का मार्ग था। सतनाम तो कहते हैं सतलोक को, कौन, श्री शिवदयाल जी के वचन है कि सतनाम माने सतलोक, फूटे बाग इनके। सतनाम तो जाप है, जाप करने का दो मंत्र का, और ये सतनाम को सथान बता रहे हैं। अभी दिखाता हूं कि राधा इनकी धर्म पत्नी थी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज की धर्म पत्नी थी श्री राधा जी, और उनको श्री राधा जी को उनका वास्तविक नाम था श्री नारायणी देवी, और नारायणी देवी को वो राधा कहा करते थे, इसलिए नारायणी देवी का नाम राधा पक गया। नारायणी देवी कम कहते थे और राधा घनी कहते थे। अब आपको दिखाते हैं श्री महाराज जी के उनके अपने विचार। ये देखें कि उनको राधा कहा जाता था, प्यार से राधा कहा जाता था। यह है राधा स्वामी सारवचन, राधा स्वामी सारवचन, राधा स्वामी छंद बंध, श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, इनके लेखक कौन है। यह है सारवचन छंद बंध, प्रकाशक हैं एस एल सौंदी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब से प्रकाशित है। इसमें स्वामी रामानंद श्री शिवदयाल जी के विषय में जानकारी दी है। वचन आखिरी लिखा है, वचन आखिरी। इसमें ये लिखा है कि ये वचन जो है, वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं सत्संगियों व सत्संगनियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाया, अपनी जुबान से कहा, 25 जून सन 1878 में। अब क्या कहा ये देखना, ये वचन नंबर 5 में देखे नीचे। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को जान समझना। अपनी पत्नी की तरफ संकेत कर रहे हैं स्वामी शिवदयाल जी कि उस राधा जी को ऐसा ही जानना जैसा मुझे जानते थे, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। यहां देखना, संकेत दिया है कि असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। राधा इनकी पत्नी का नाम था शिवदयाल जी की का, और इसलिए राधा स्वामी माने मालिक होता है पति, जैसे उमा स्वामी श्री शंकर जी को कहते हैं। उमा स्वामी जहां शिवपुराण में लिखा है उसका सीधा अर्थ होता है शिव जी, शिव भगवान। तो जहां राधा स्वामी शब्द का अर्थ है शिवदयाल जी। तो अब देखिए सतनाम सतनीसी इन्हीं महापुरुष के 14 नंबर वचन में लिखा है, फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुहतब तवज्जो होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक न कहे कौन, शिवदयाल जी जहां से ये पंथ शुरू होता है, सतनाम और अनामी का था। आए है ये सतलोक ने सतनाम सुना सुनाया, गुरु ग्रंथ साहब में सतनाम सुन दिया इन्हें न्यूना बेरा, यो सतनाम सह के सतनाम और अनामी का था। और राधा स्वामी मत सालग राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना, सत्संग आगे से सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से अधिक बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और सालग राधा स्वामी मत तो सालग राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। यहीं से ये मत कैंसल हो जाता है कि जिसको ये अपना मुखिया मानते वो कहते मेरा ये पंथ नहीं है। कारण जैसे एक बार श्री नानक साहिब जी के को एक गांव में डले मारे, पत्थर मारे, दो उनके साथ शिष्य थे। तो श्री नानक साहिब जी ने कहा कि रब करे तुसी वसते रहो, निकल गए। अगले गांव में बहुत अच्छा गांव था, अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति थे, महाराज जी का अच्छा आदर सत्कार किया, सेवकों का सत्कार किया, और फिर चलने लगे ना सुबह खाना खुना खा के, आशीर्वाद दिया रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब उन सेवकों ने आगे चलकर कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जिन निकम्मे व्यक्तियों ने हमें पत्थर मारे, बदतमीजियां की, उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया कि तुसी वसते रहियो, और इन्होंने इतना इतना अच्छा सत्कार किया, हे सतगुरु, इनको आपने ऐसी आशीर्वाद दे दिया कि तुम उजड़ जाइयो। अब संत किस उद्देश्य से कहते हैं वो वही जानते हैं। तो श्री नानक साहब जी ने कहा कि बच्चों, वो नकम्मी आत्मा थी, और वो एक कह जगह पड़ी रहे तो बढ़िया है ना, वो कहीं चली जाएंगी तो दूसरे ने खराब करेंगी, उनकी ऐसा बदव्यवहार था, और यहीं कभी मर जाएंगी, कभी इकट्ठा ही वो गांव का गांव निकम्मा एक ही जगह नष्ट हो जाता है। और ये है पुण्यात्मा, ये अगर कहीं दूसरे गांव, क्यों दूसरे गांव में जब ही जाएगा इंसान, जब वहां उसको कोई अच्छी सती थी, वहां से अधिक कोई जमीन मिल जाएगी, कोई बिजनेस व्यापार होगा, तो ये प्रफुल्लित होकर के दूर दूर जाएंगे, और वहां फिर ये अपने शिष्टाचार से दूसरों को भी ठीक करेंगे, इसलिए आशीर्वाद दिया। तो अब संत क्या कहता है, अंत समय था इस शिवदयाल जी का, जब मरने लग्या, मृत्यु के समय दुखी होता कह रहा था कि मेरे बराबर में यू एक पंथ और चला दिया राधा स्वामी इसने, सालग राम जी ने, तो अब दुखी होता कह रहा है भाई मेरा तो यो पंथ है नहीं, पर चलने दो, लड़ियो मत, कहीं तुम बाद में फिर खेचा तानी कर दो। इसलिए संत चुप हो गया कि इसने भी चलने दो, ये इनकी आत्मा की पुकार के विरुद्ध था। और इन स्वयं बिना ज्ञान श्री शिवदयाल जी ने के है, ये सतनाम क्या है, ये सतलोक क्या है, ये भगवान ये सतनाम को सतलोक कह रहे हैं, तेरा बुलाओ यो। अब देखो शिवदयाल जी के द्वारा ही एक व्यक्त, शिवदयाल जी महाराज की ही विचारों से रची एक पुस्तक, और ये राधा स्वामी व्यास दे रहते हैं, सार बचन वार्तिक, ये सार राधा स्वामी सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, वो छंदबंध सार्वचन थी, ये वार्तिक है, इतना अंतर है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इसके लेखक कौन है, वही प्रकाशक हैं, प्रकाशक है एसएल सौंदी, सार्वचन वार्तिक एसएल सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये क्या कहते हैं देखना, इसमें भी ये लिखा है, पांचवें में देखना, पांचवें में लिखा है, फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालग्राम वह साधु कुल और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज होकर कहा, फरमाया कि जैसा अब मुझको मानते हो समझते हो वैसा ही अब राधा जी यानी मेरी पत्नी को समझना, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। इसमें इन्होंने वो टिप्पणी निकाल दी कि राधा कौन है, कोई बात नहीं। अब 14 में लिखा कि सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतज होकर कहा कि मेरा मत तो सतनाम और नामी का था और राधा स्वामी पंथ मत सालग्राम का चलाया हुआ मेरा नहीं है। और फिर इसी के 5 नंबर पृष्ठ पे कमाल कर दिया है भगवान, बालक भी ना कहें ये स्वामी जी हैं, ये श्री शिवदयाल जी महाराज हैं जिनसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया माना जाता है। और इनकी इनके विचार देखना प्रश्न नंबर 5 पे, 3 पर, ये सार्वचन वार्तिक के प्रश्न नंबर 3 पर क्या लिखा है कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी को ये धाम कहते हैं, मुकाम, मुकाम माने धाम स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अरे तेरा गजब हो यो राधा स्वामी ने, तुम आदमी मानो हो कोई कोई जगह मानते हो, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है और यह यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। देखिए इनकी कितनी मनगढ़ंत कहानियां बना रखी हैं कि यही सच्चे साहिब का नाम भी है और यो स्थान भी है, अब राजा भी वही और राजधानी भी वही। अरे तेरा गजब है। अच्छा आगे देखना, और सच्चे खुदा का है, यहां देखना, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे ये राधा स्वामी ये अनामी माने हैं राधा स्वामी को, इस तरह 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको इसको सतनाम को इस सतनाम को जिसको सतनाम को जिन संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को सतलोक सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब यो ए भगवान, बालक बच्चा भी ना लिखे इस लेख ने। ये क्या कहते हैं कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, लेकिन की अकल, और उससे राधा स्वामी कहें ये अनामी लोक ने, और उससे नीचे नीचे मेरा मेरा तो उससे अलग स्थान है। ये देखियो, ये है वो वास्तविक ज्ञान जिसकी हमें जरूरत थी। ये है सबसे ऊपर अनामी लोक है, ये अनामी लोक है, इससे 2 स्थान अगम और अलख लोक, नीचे ये सतलोक है। ये क्या कहते हैं कि ये सबसे ऊपर राधा स्वामी, इसने अनामी के स्थान पर यो नकली राधा स्वामी नाम दे दिया इसका, और इससे नीचे 2 स्थान 2 मुकाम छोड़कर ये सतनाम का स्थान है। इस सतलोक को इन्होंने सतनाम लिखा है, और इसी इस जगह को इस परमात्मा का जिक्र नहीं किया, इसको निराकार बताते हो, कहते हैं इसी इस सतलोक को सतनाम सतनाम भी कहते हैं, इस सतनाम का स्थान है, ये सतनाम का स्थान, और इस सतनाम इसी को इस सतलोक को के सतनाम को के कहते हैं, इसको सतलोक भी कहते हैं, सार शब्द भी सत शब्द भी सतपुरुष भी इसी को कहते हैं। अरे तेरा गजब है। अब किसी ने जिंदगी में कार भी देखी नहीं और अपनी समझदारी और अपने जो है जंगल में को घने जंगल में रहता हो और उन अपने वहां पर आंडी पाक रहा हो, मैं रोज कार में घूम के आता हूँ, मैंने कार बहुत देखी है, वो पेट्रोल से चलती है सुनी सुनाई और सड़क पर घूमती है, वो फिर किसी ने पूछा वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर किसे कहते हैं, तो क्या व्याख्या करता है वो नादान के सड़क भी कार ही है, ड्राइवर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार ही है, और चलाने वाला ड्राइवर यानी वो कार तो कार है ही है। इससे सिद्ध है कि उसने जिंदगी में कार सुनी सुनी है कितने पर देखी नहीं, इन्हें तो ये मूर्ख व्याख्या नहीं करता। तो इन्होंने वही कर रखा कि सत राधा स्वामी कहो सबसे ऊंचा मुकाम है, और ये नाम है कुल मालिक का, राधा स्वामी नाम भी है और वो स्थान भी है। अब देखो स्थान एक मकान को कोई आदमी कहे कि मकान भी आदमी है, वो उसने क्या है कहानी बेरा, उसको बिल्कुल अकल ही नहीं है, या तो शराब पी रहा है या कति महामूर्ख है। तो इनकी ये टिप्पणी बिल्कुल एक इतनी व्यर्थ है जो इनके सारे सदगुण यानी पंथ को फेल करती है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब सच्चे खुदा का है। लतीफे था, लिखना तो ठीक सीख लिया लेकिन व्याख्या सारी गलत। सतनाम अफिर को और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। आए आए। नाम को के क्या क्या कहा है मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक सतनाम को सतलोक सचखंड सार शब्द सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान कराया है। अरे तरह के जो सतपुरुष तो भगवान है और सतनाम एक नाम जाप करने का, सतलोक वो स्थान जहां भगवान रहता हम जावेंगे वहां रहा करेंगे। इन राधा स्वामी पंथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के विचार है। अब उनके बाद श्री शिवदयाल जी महाराज के शिष्य बाबा जयमल सिंह और बाबा जयमल सिंह के ब्यास में डेरा बना बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य श्री सावन सिंह। श्री सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ। श्री सावन सिंह जी सच्चा सौदा जहाँ के प्रवर्तक श्री बलोचिस्तान बलोचिस्तानी शामस्ताना की जी के गुरु जी कौन श्री सावन सिंह जी। श्री कृपाल सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष के शिष्य गुरु जी कौन श्री सावन सिंह जी और चरण सिंह जी के भी गुरु जी श्री सावन सिंह जी। उस श्री सावन सिंह जी के विचारों से आपको पता लग जाएगा सच्चा सौदा धन धन सतगुरु और दिल्ली वाले क्या होंगे जब उनके गुरु जी के ज्ञान का ही ज्ञान इतना निराधार और बालक बिना कर ऐसी व्याख्या कर रखी। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग तीन। अब ये फंस गए सारे, सब पर छापा सा लाग गया और सब पकड़ दिए, इसलिए सारे फू फा कर कर टिक गए। कति एक बार तो उफने हैं फिर देखा अपनी मूर्खता चुप करके बैठ जाए। अब कहते हैं संत मत प्रकाश भाग तीन और ये है श्री हजूर जी साहेब कौन श्री सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग तीन परम संत हजूर श्री महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, ये इनके वचन है। इसमें इसके 76 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूँ। 76 पृष्ठ पर ये कहते हैं सतनाम कहते हैं सतलोक को। हाय हाय सतनाम कहते हैं सतलोक को श्री सावन सिंह जी के विचार। प्रश्न नंबर 76 यहां देखना। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। हाय हाय सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। और एक प्रश्न आगे क्या कहते हैं सतनाम तो असली राम है। ये देखो ये 79 पृष्ठ पर नीचे देखना। यहां देखो परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने खोलनी बिना इसका अनुवाद भी नहीं करना आया कि भगवान कहां पाया इन महापुरुषों ने। दशरथ कहते हैं सत्संग में पूछा किसी ने स्वामी सावन सिंह जी से, हजूर चारों रामों के विषय में खोल कर बताइए। श्री सावन सिंह जी ने खोला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। देखना के बताया कि पहले राम राजा दशरथ के पुत्र त्रेता युग में हुए। यहाँ देखो दूसरा राम मन है, दूसरा राम मन, और देखो तीसरा राम, और तीसरा राम ब्रह्म है, और चौथा राम सतनाम है। अरे फूटे बाघ मारे ये ऐसे मार्गदर्शक मिले में, चौथा राम सतनाम है और ये असली राम है। तेरा गजब वो यो 76 पर तो कह रहा सतनाम माने सचखंड सतलोक और यहां कहते हैं ये सच्चा राम है। अब निराकार साकार के विषय में इनके विचार देखिए। जयमल सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र के लेखक श्री कृपाल सिंह जी महाराज हैं। इन्होंने सृष्टि रचना के विषय में 103 नंबर प्रश्न पर क्या बताया है, ये है जयमल सिंह बाब, ये है जीवन चरित्र परमहंस बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। कृपाल सिंह जी इसके लेखक हैं दिल्ली वाले और कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल सावन आश्रम दिल्ली से ये प्रकाशित है। नीचे देखिए, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, नई दिल्ली या दिल्ली से प्रकाशित है। इन्होंने 102 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूँ सृष्टि रचना। हे भगवान, हे परमात्मा, ये देखो 102 पृष्ठ पर देखिए नीचे सृष्टि रचना, यहाँ देखना। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार निर्गुण अनाम था, है उसका ना न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की बात है, थी, चीज थी। नेति नेति कहकर उसकी संकेत दिया जाता था, अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। बताओ, लेकिन लतीफेदार कितने लच्छेदार बना रखी है, कख इसमें है नहीं। वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, इत्यादि। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णानतीत है। उस यही श्री हकीकतम, यही श्री सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, यानी ऊपर भी परमात्मा निर्गुण निराकार था, ये देखो निराकार, और यहाँ कहते जब वो अभिव्यक्त में आया, नहीं आकार में आया, तो वो के बन गया अलख लोक, अगम लोक और सतनाम लोक हो गया। सतलोक को सतनाम मिला, वो तीन, यह तीन निर्मल चेतन मंडल बने और धवनी और ज्योत स्वरूप हो गया। ये सृष्टि रचना लिखती। वाह वाह जी वाह, जय बंदी छोड़ी। अब 20 पृष्ठ पे यहाँ निराकार लिख रहे हैं, और अपनी कलम से इसके 20 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि परमात्मा ने, प्रभु ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया। इसके 20 पृष्ठ पर देखो, नीचे आइए। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, और फिर भी परमात्मा निराकार है। अरे थरे बाग, कमाल के आदमी है मेरे मालिक। अब सच्चा सौदा वालों को देखो, अब सत्संग की सड़क है। आह ए भगवान, नाम पे ऐसा कति आदमी अब पे खिंचा चला जा। सत्संग की सड़क, ऐसा बढ़िया नाम रखा है, सत्संग की सड़क। और ये इसके लेखक कौन है, श्री हजूर बलोचिस्तानी सामस्ताना, जो सच्चा सौदा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट जो गद्दी नसीन संत श्री सतनाम सिंह जी। यह सचखंड की सड़क, ये ऐसी मिली थी, एक भगत से मंगाई थी। उसके बाल खेल लग रहे थे इसके ऊपर, नो जो मार रखे इसके ऊपर पेन चल गए। बोले ने कौन पढ़ा, शर्मा दर्द कर रखा था इन्हें। ये देखो, दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा वाले की, इसने लिखा है। इन्होंने क्या सृष्टि रचना बताई है, कलम तोड़ बताई है। इसके 226 पृष्ठ पे, 226 पृष्ठ पे नीचे देखो, त्रिलोक की सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सृष्टि रचना काल की है, निरंजन ने की है। संतों का देश सत्कंड या सतलोक है, बिल्कुल सही लिखा। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, बहुत अच्छा लिखा। अपने गुरुदेव से अच्छी उभार के लिखा इसने, इनके गुरुजी तो फेल हैं सारे। अच्छा, क्या लिखा, सतनाम जो सतलोक है वो सतपुरुष का स्थान है रहने का, बिल्कुल सही। अच्छा, और वह सतलोक के विषय में आगे देखना के क्या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है सतलोक, वह सतलोक सदा अजर अमर एक रस है। वहां चेतनता ही चेतनता और प्रकाश ही प्रकाश है, और नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और देखो, उस सतलोक को ही, उस सतलोक को ही, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। बहुत समझदारी करने की चेष्टा की, फिर भी फेल। कहते हैं, गुरु बिन कहूं न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझना सार रहे अज्ञानी। ये पांच नाम देते हैं, और पांचों नाम काल के घटनामायण में श्री तुलसीदास साहिब हाथरस वाले और श्री तुलसीदास जी हाथरस वालों को ही ये अपना, यानी कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी से ही मार्गदर्शक शायद, मतलब तुलसीदास जी इन श्री शिवदयाल जी के माता पिता के गुरु थे और वहीं से इन्होंने ज्ञान कलेक्ट किया था, पर गुरु नहीं मानते श्री शिवदयाल जी का कोई भी। तो अब देखो श्री घटरामायण में बहुत भाग दो में तुलसी साहिब हाथरस वाले की ये भाग एक में और ये देखना क्या कहा है। पांचों नाम काल के जानो हो तब दानी मन संका आनो, 27 नंबर पे ये पांचों नाम काल के हैं जो तुम देते हो, ये राधा स्वामी और धन धन सतगुरु। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, धर्म रायों पांचों बखानी। फिर कहे यहां देखना, फिर क्या पूछा है कि दानी सुन विधि मत हमारी, हम चल जाव पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिद्धाऊं, आद नाम ले काल गिराऊं। और फिर कहते सत नाम ले जीव उभारी, अचल जाऊं पुरुष दरबारी। जीव क्या कहता है कि मैं दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा सतपुरुष दरबारी। कैसे जाएंगे कि वो पांच नाम तक काल के हैं, वो तो एक अन्य के नहीं। यहाँ कहते हैं आदि नाम ले काल गिराऊं, आदि नाम उसार नाम ते काल को ढा दूंगा। और फिर कहते सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये है विधि सतलोक जान की कि सतनाम आपको मिला है दो मंत्र का, इससे जीव का उभारा होगा, आप ऋण मुक्त हो जाओगे इस वास्तविक दो मंत्र के जाप से। और सारनाम नहीं मिला तो फिर भी फेल रह जाओगे, यानी पार नहीं हो पाओगे। तो ये केवल एक बार पांच ही नाम दे करके टंटा काट देते हैं। और नाम तीन सतीथी में, पांचों नाम तो काल के हैं ही है, लेकिन वो जो पांच नाम हम देते हैं वो काल के नहीं, वो यहां से निकलने के तरीके। ये पांच नाम अलग हैं और वो जो नाम देते हैं पांच वो अलग है। इन पांचों के बाद एक ऊपर एक नीचे परमात्मा की एक और नाम मिला दिया है, जैसे विष को किसी ऐसी दवाई में मिला दी जाती है तो वो फिर मेडिसिन बन जाता है, ऐसे ही ये दोनों नाम और मिलने से ये पांच चुप यहाँ कमल, ये कमलों के, तो वो पूर्ण परमात्मा की विधि का वास्तविक मंत्र बन जाता है और यहाँ से जाल काल से छूट सकते हैं। तो इस प्रकार ये परमात्मा की प्राप्ति होगी। पुण्यात्माओं सत्कर्मान्ना, मुझे कोई शौक नहीं किसी की बुराई करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब नरक की तरफ जा रहे हैं, जीवन व्यर्थ हो रहा है, मानुष जीवन बहुत मुश्किल से बनता है। क्योंकि दास भी इसी कैटेगरी में था कि कोई कह देता था यू है भगवान, हम मान लेते थे, कोई किसी को भगवान बताता था उसी को मान लेता था, क्योंकि सरदागणी थी। और मुझे पता है मेरे जैसे दुखी बहुत हैं संसार में परमात्मा को पाने के, बाकी वो संसारिक कोई दुख नहीं था दास को किसी प्रकार का भी। और हो जाता आगे अगर अभी तक ठीक कमाई चल रही थी तो अच्छा हो गया, समय पर मिल गए, नहीं तो दुख भी बहुत हो जाने थे। लेकिन परमात्मा ना मिलना, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाना, इससे बड़ा कष्ट प्राणी के ऊपर कोई नहीं आएगा, और इससे बड़ा धोखा कोई नहीं जो परमात्मा को, हमें परमात्मा से दूर जो कर रही है और वास्तविक विधि से हमें भटका रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है स्वयं भी समझें और इन बिछड़ी हुई आत्माओं को सतमार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। बोलो सतगुरुदेव। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देख्या ख्याल। कबीर कहता हूं कही जात हूं, सुनता है सब कोए, सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। कोटि यज्ञ अश्वमेघ से नहीं हुए दीदार, आदिनी और बंदगी से छिन में उतर पारे। रतन जड़ाऊ मंदिर है लख योजन अस्थान, सकट सगाना बैठियो चाहे हो इंद्र समान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही हमें बताकर जाते हैं। आज उन्हीं परमेश्वर की देन, उन्हीं परमेश्वर की रजा से ये तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं तक पहुंच रहा है। आज ये सातवां दिन है और ये सात दिन ऐसे चले गए जैसे सात मिनट होती है। यहां परमात्मा की एक विशेष व्यवस्था होती है और विशेष उपस्थिति होती है। जहां पर संत समागम होते हैं वहां प्रभु की विशेष रजा होती है और इस रजा के जो पात्र होते हैं वो भी विशेष ही पुण्यात्मा हुआ करती है। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही और भाग बिना नरपावत नाही। जितना भी ये समय पुण्यात्माओं को यहां मिला है, किसी को दो दिन का, किसी को दो घंटे का, किसी को सातों दिन का, किसी को चार दिन का, ये उनका इतना ही औसतन सौभाग्य था और रजा परमेश्वर की, कबीर साहिब की है। ये सब कृपा उस परम पिता कबीर परमेश्वर की है। उसकी रजा के बिना ये जीव न तो सत्संग में आ सकता है और ना ही इधर ये मुख कर सकता है। और जब पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं उस दिन परमेश्वर विशेष कृपा बख्शकर उनको यहां लाते हैं। जैसे एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीब दास हरि नाम बिना सभी काल की जेल वे। हम यहां काल की जेल में हैं। जो कुछ अच्छा यहां पर आचरण ऋषि महापुरुष बनकर किया उन्होंने ऊपर स्वर्ग रूपी जेल में स्थान मिल गया। जैसे कारागार के अंदर उनके अपराध के आधार पर उतनी ही कठिन यातना दी जाती है और जिनके कम इतना भयंकर दोष नहीं होता उनको कुछ कम यातनाएं वहां जेल में दी जाती है, अर्थात उनको ऐसी ही सुविधा वहां मिल जाती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि एक तो पुण्य है, पुण्य कर रहा है, एक पाप कर रहा है। यदि उनको वास्तविक तत्व भेद और वास्तविक भक्ति मार्ग नहीं मिला तो दोनों ही काल की जेल में है। वो स्वर्ग रूपी जेल में है और पापी नरक रूपी जेल में आ जाते हैं। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हमें यहां दो घंटे, दो दिन, चार दिन, दस दिन, पांच दिन, जितना समय मिला है, इस काल की कारागार से परमात्मा आपकी जमानत करवा कर लाते हैं कुछ समय के लिए और कहते हैं मेरे बच्चों को छोड़ दे, फिर भेज दूंगा वापस तेरे काल के तेरी इस कैद में। इतना समय दे दे इनको कि ये दो चार दिन परमात्मा की महिमा सुन सके, खुली हवा में श्वास ले सके। तो ये आपको इतनी राहत उस परम पिता कबीर साहब की रजा से होती है। क्या बताते हैं, अनमान सरोवर मेल रे, बहुत सागर से पार उतारा वो अगम अगोचर खेल रे। कहते हैं परमेश्वर अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर की महिमा का गुणगान और विधि का तरीका बताते हुए, पाने की विधि बताते हुए अपनी अमृत वाणी में कह रहे हैं, मन मान सरोवर मेल रे, बहुत सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। मन सद्भक्ति कर और उस परमात्मा का मिलन इन नकली तीर्थों पर नहीं हो सकता। उस मान सरोवर में पहुंचो आप जो मान सरोवर है, अर्थात जहां परमात्मा का विशेष व्यवस्था सतलोक में है, उस सरोवर में, इस सत्संग रूपी सरोवर में, इधर ये सत्संग रूपी सरोवर है, अमृत सरोवर है, और कहते हैं या फिर सतलोक में वो वास्तविक सरोवर है, यहां आपको वास्तविक वस्तु मिलेगी। श्रवण बिना मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। ये जो साधना है तुम करते हो उसे अलग है, वो साधना वो बिल्कुल भिन्न है। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे, गगन मंडल में ध्यान धरो जा, दीपक है बिन तेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, ध्यान कैसे धरना है, जैसे हठ योग से ध्यान नहीं धरना, सहज समाधि से ध्यान धरना। जैसे हमने कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, या कहीं आपने सत्संग में आना है, तो आपका कई दिन पहले ध्यान यहां टिक जाता है, और उसके लिए अपने काम को आगे पीछे करके, छुट्टी आदि ले करके, अपनी व्यवस्था करके यहां प्रस्थान कर देते हो। कहते अब तुम उस गगन मंडल में, सतलोक में, और वहां पर वो लोक स्वयं प्रकाशित है, वो रितधामा परमात्मा भी स्वयं प्रकाशित है और सतलोक भी स्वयं ही उसमें उज्ज्वलता है। तो क्या कहते हैं, चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे, ये जग चुगता डेल रे। डेल माने डले। इस वास्तविक अमृत ज्ञान में, तत्व ज्ञान में हीरे मोती माणक बरस रहे हैं, अर्थात यहां पर आपको वास्तविक तरीका प्रभु का और वास्तविक पुण्य होने का लाभ पुण्य यहां होता है, और इसकी इसके अतिरिक्त आप अन्य स्थानों पर अन्य साधनाओं में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, वो तो डड़े ढो रहे हो। पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपकी आत्मा गदगद हो जाया करेगी। यहां एक कदम भी चलते हो इस सत्संग की तरफ, वहीं से आपका पुण्य प्रारंभ है, और वहां बैठकर भी याद करते हो वहां भी पुण्य है। यहां आते हो, सेवा करते हो, भगवान का अमृतवाणी सुनते हो, सत्संग में जिस आप सही हो गए अपना दान पुण्य करते हो, ये आपको पुण्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त शास्त्र विरुद्ध साधना में आप चाहे कितना पुण्य करो, कितना सफर तय करो, कितना समय ड्यूट करो, उससे आपको हानि है, क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने हिसाब किताब से पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, और न ही उनको कोई कार्य सिद्ध हो, अर्थात यूजलेस। इसलिए क्या बताते हैं कि चारों युगों में, चारों युगों में हम पुकारे परमात्मा कबीर साहब आए, और फिर कबीर साहब अपनी पूरी महिमा एक बार वर्णन करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर अपने गवाह तैयार करते हैं हरेक युग में। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी प्रकट किए उन्होंने, और फिर उनको अपना भक्ति मार्ग दिया। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी आदि, धर्मदास साहिब जी आदि को यही ज्ञान दिया उन्होंने, फिर यही आवाजें लगाई और यही प्रचार प्रारंभ किया। तो कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगाई, लेकिन ये संसार हमारी सुनता नहीं। उस रूढ़िवादिता पर इतना गहन हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि कहते भी नहीं मानता। पांच पच्चीस तीन पर तकिया, ये मन सुन सके लरे, वृद्ध बान ले बुद्धि का बांधो, भजन भजन बहु जल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो समझो नहीं बले, बारू कैसी गांठ बंधी है नर समझो मूड बले लरे लकी करोड़ी भये जगत में संगना चाल्या देल रे। कि ये तो बालू जैसा गांठ बंध रही है, कोई कोठी है ते आपका शरीर है चाहे फैक्ट्रियां हैं, जरा सा कोई भूकंप आ गया तो सब ईंटे न्यारी न्यारी। कहते हैं तो बालू कैसी व्यवस्था है, शरीर का नहीं पता कहां किस कारण से विनाश हो जाए। तो कहते परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, मेरे बच्चों तुम कुछ आंख खोलो, तुम बालक हो गए गणे और समझो हम तुम कहां बैठे हो, कहां जाना है, कितना कितना कुछ हम कह रहे हैं तो तुम अभी भी ध्यान नहीं देते क्योंकि आपके ऊपर नशा गना हो रहा है। इस नशे को उतारने के ये एंटीबायोटिक यही तत्व ज्ञान रूपी प्रवचन होते हैं ताकि ये प्राणी कुछ फटफड़ी लेवे और सोचे सचमुच या बिजली गिर गई तो कहां जाएंगे। हम अपने घर से प्रस्थान करते हैं किसी दूसरे शहर को तो जाने से पहले रात्रि में ठिकाना ढूंढते हो कहां रुकेंगे, और कहते हैं संसार छोड़कर जाते हो तुम सोचते भी कोई ना हम कहां जाएंगे कहां रुकेंगे। तो अब हमने पूर्ण गुरु मिल गए, पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई तो हम सीधे अपने भगवान के चरणों में जाएंगे, हमारा उनसे रिश्ता हो गया। क्या कहते हैं, सुन शहर में हुई सगाई हमारे हंस मंगे हैं। हमारे परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं तो सुन शहर में सतलोक में सगाई होगी हमारे भक्तों की, अब ये वहां मांग रखे हैं, अब उनका यहां नाता जुड़ गया तो यहां से जब जाएंगे तो हम सीधे अपने उस लोक में जाएंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए थे। और परमात्मा कह रहे हैं कि लखी करोड़ी बहे जगत में और संगना चाला धेल रे, यानी एक ना पैसा भी नहीं ले जा सका तू। अस्ति घोड़े अर्थ पाल की ताजी घाल हमेल रे, सूर्य होकर शीश कटावे लावत है तल सेल रे। एक पापी एक पुन्नी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सत एक सत नाम भजन बिन सब ही जम की जेल वे। एक सत नाम बिन, उस वास्तविक मंत्र की भक्ति बिना सभी काल की जेल में। क्या बताते हैं फिर, मन मानिक मैल समंदरे, मन मानिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, माणिक समंद लहर रे, यानी वहां परमात्मा के सच्चे राम नाम के मोती जो है उनकी बौछार होती है वहां तुम नहीं आते। और समुद्र जैसे समुद्र के अंदर लाल होते हैं हीरे मोती बनते हैं, तो कहते हैं उन समुद्र से लालों और हीरे और मोतियों को कौन प्राप्त कर सकता है, मुरजीवा। मुरजीवा कहते हैं जो गोताखोर, लंबी सांस जिसने लेनी आ गई हो, अभ्यास बना रखा हो। तो कहते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर निर्मल आनंद कंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत केत नैन चमयो फिरा मोतिया बिंदरे। के मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये मुक्त होने का वास्तविक मुक्ति का मार्ग रूपी जो मोती है, अर्थात ये जो धन है ये लाल है, ये तुमने दिखता कोई ना। हम कितना समझाते हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें हानि होगी, लेकिन ये काल के दूत हमारी बातों को तुम्हें मानने नहीं देते। अब उनके भी मोतियाबिंद है और आपको भी कर दिया इन्होंने सफेद मोतिया, जिसको हो जाता आंखों में उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं पर उसको देख ताकत ही नहीं। ऐसे ही ये महर्षि और महान संत का लागे जो परमात्मा को नहीं पहचान पाए, ना उनकी प्राप्ति की विधि का ज्ञान था ना उनको तत्व ज्ञान था, और अनजानों में वो अनजान ही प्रभु पाक के उनमें वो महिमा के पात्र बन गए। तो यहां परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे, हीरे माणक मोती वर्ष ये दिखत के तो नैन चम है, ये फेरा मोतिया बंदरे।